आज की कहानी है खोया हुआ सच, जिसे लिखा है राजेंद्र जगोता ने। तो कहानी शुरू करें। खोया हुआ सच। सीमा रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए चुपचाप दरवाजा ठेलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। सीमा के मुंह से एक निश्वास सा निकला। आज चौथा दिन था कि रमेश उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वह कब तक पिएगी? अनमस्क सीमा रसोई के कोने में बैठ गई। तभी पड़ोस की खिड़की से छन कर आती खिलखिलाहट की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गए और दरार से आंख लगा कर देखा। लीला का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो डुबो कर खा रहा था। लीला किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज के बटन टाक रही थी। चाय का आखिरी घूंट भर कर लीला का पति उठा, कमीज पहनकर बड़े प्यार से लीला को कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। सीमा के मुंह से एक ठंडी आ निकल गई। कितने खुश हैं वे दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। लीला का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया था। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही लीला है जो कुछ साल पहले कॉलेज में भोंदू के नाम से प्रसिद्ध था। पढ़ने में फिसिटी और महाबेवकूफ, न कपड़े पहनने की तमीज थी न बात करने की। ढिल्लम ढाल कपड़े पहनकर वह वक्त बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लास रूम से 100 गज दूर पर उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ता तो बैत देकर उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंस हंस कर कहती, इस फुहर से कौन शादी करेगा। तब सीमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फुहर और भोंदू लीला शादी के बाद उसकी पड़ोसन बनकर आ जाएगी और वह खिड़की की दरार से चोर की तरह झांकते हुए उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर सीमा के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह अनमस्क सी वापस अपने कमरे में लौट आई। सीमा पानी। तभी अंदर के कमरे से छिन्न सी आवाज आई। वो उठने को हुई लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो सीमा को, वह बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को जो तुम्हारी वजह से हर दम मुझे दुत्कारता है और जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा कर लेता है। और प्रतिशोध की एक कुल्लिन मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर वह तन कर रमेश की फोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है रमेश, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारी माँ का सही टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उससे जवान चलाई। तो लो, यह है सीमा का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सीमा सब कुछ सह सकती है, एक अपनी उपेक्षा नहीं, और धूस के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। वह अपनी हंसी की आवाज़ उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा और इस बदले का बदला क्या उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा? आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चार दीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही काल कोठरी में कैद को दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुहारें फेंकते रहेंगे, अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उससे लगा जैसे कमरे की दीवार घूम रही हो और वह विचलित सी होकर थम से पलंग पर गिर पड़ी। थप थप थप, खिड़की थपथपाने की आवाज आई और सीमा चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है, उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने लीला खड़ी थी, भोंदू लीला, मोटा शरीर, मोटा थुलथुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों की अल्हड़ता। दीदी डेटॉल है, उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है, अगर डेटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। बिल्लू को, सीमा ने नाक सिकोड़ कर पूछा ही था कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भों भों करता हुआ खिड़की तक आ गया। सीमा पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, मरे को तो पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है, और इस भोंदू लीला को क्या हो गया। कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बैत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसा दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की अनमस्यक सी वह अंदर आई और डेटॉल की शीशी लाकर लीला के हाथ में पकड़ा दी। लीला शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर ली, पर भोंदू लीला का चेहरा जैसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसे ही बेवकूफ़ है जैसे कॉलेज में थी, पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण सकल सूरत की बेवकूफ़ और फूवड़ बीबी को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत ही नायाब चीज हो। कभी उसके लिए टॉफियाँ लाता, कभी चॉकलेट, हर महीने तनख्वाह मिलते ही सिनेमा दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते थे। सीमा हैरान होती थी, मन ही मन उसे लीला के पति पर गुस्सा भी आता था। आखिर उस फूहड़ लीला में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब सीमा का पति कई दिन उससे नाराज रहता तो उसे लीला से रस्क सा होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ यह भोंदू जो बदसूरत और बेवकूफ़ होते हुए भी पति से बेपना प्यार पाती है। सीमा के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती है। अपनी अपनी किस्मत है, अचार के साथ रोटी खाते हुए भी लीला और उसके पति के ठाके लगते हैं, और दूसरी ओर उसके घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सजा हो। जब भी वह खिड़की खोलती उसके अंदर खालीपन का एहसास सा गहरा जाता और वह अपने दर्द का गहराइयों में डूब जाती। सीमा दवाई, दूसरे कमरे से छिन सी आवाज आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली से उठ बैठी, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ पड़ी। क्या है इस घर में मेरा जो मैं सब की चाकसी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज़ अनसुनी करके फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार लीला ने जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर से भौंकने की आवाज़ आई। उसने झपट कर खिड़की खोली। लीला के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लीला विलाप करती हुई कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खा जाए, बीमारी फैलेगी, वह बोला। लीला ने दौड़ कर उसके पांव पकड़ लिए। भगवान के लिए मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर उसकी खाद चेक करा लूँगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रोज से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, नगर पालिका पहुँच कर छुड़ा लाना, 25 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह सीमा के घर की ओर भागी और सीमा की खिड़की पर खड़ी देख कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 25 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या, इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 25 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो और कोई कुत्ता पाल लेना, सीमा बोली। लीला ने एक बार असीम निराश और वेदना के साथ सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें हाथ पे पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ी। भैया भैया, यह लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर बहुत चक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे की ओर देख कर उसे दया आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। लीला एकदम कुत्ते से लिपट गई जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई परिजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। सीमा दरवाजा खोल कर उसके पास पहुंची और बोली, चुप करो लीला, पागल ना बनो, अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया है, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? लीला ने सिर उठाकर कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा ना कहो सीमा दीदी, ऐसा ना कहो, यह बिल्लू है मेरा, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो यह कितना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। इन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुचकारते दुलारते, और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूँ, जल्लादों के हवाले कर दूँ, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खा गया। नहीं नहीं सीमा जी, नहीं, मैं इसकी सेवा करूँगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं, यह बिल्लू है, मेरे पति के जान से भी प्यारा बिल्लू। और जो चीज़ें मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वो बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। सीमा ठगी से रह गई। आंसुओं के अंबार में डूबी यह बोंदू क्या कह रही है? उसे लगा जैसे लीला के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़ों की तरह पड़ रहे हैं और उसका बिल्लू भों भों करके उसके अपने घर में भगा देना चाहता हो। अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने लीला का आंसू भरा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मत रो मेरी लीला, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए। आज मैं समझ गई कि तुम्हारे पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूँ जो अटूट संबंधों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं मेरी लीला, अब ऐसा नहीं होगा। लीला ने हैरान होकर देखा, सीमा पागलों की तरह हाथ फैलाए बेतहाशा अपने घर की ओर दौड़ी जा रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, की कहानी है उधार का सुख, जिसे लिखा है रेणु मंडल ने। चलिए कहानी शुरू करें। उधार का सुख। शमशान घाट से लौटते लौटते रात हो गई थी। दिन भर के थके मादे रिश्तेदार को जहां कहीं भी जगह मिली वहीं बसर गए और जल्दी ही नींद की आगोश में समा गए। रोते रोते बेहाल हो चुकी सुनंदा की आंखें भी बुखार से जल रही थी। वह भी चाहती थी कि कुछ देर सो जाए, किंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जिंदगी की नश्वरता ने उसके पति को उससे छीन लिया था। वह पति जो उसकी जिंदगी का स्वामी था, जिसने जिंदगी भर दुख सुख में साथ निभाने की कसम खाई थी, वही उसे दुखों के अथाह सागर में धकेल गया था। अब तो मात्र स्मृतियां ही शेष रह गई थी। वक्त जिन लम्हों को अतीत के गर्द में डुबो देता है, व्यक्ति लाख चेष्टा करे उन्हें वापस नहीं बुला सकता, किंतु हमारा यह मन उन लम्हों को पलक झपकते ही पुनः पा लेता है। मात्र पा ही नहीं लेता, पुनः उन्हें जीता भी है। सुनंदा के संवेदनशील मन ने भी अखिलेश की स्मृति को राख के ढेर में से अपने खोए हुए पलों को पुनः पा लिया। जब अखिलेश बैंक में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त थे, विवाह को 7 वर्ष हो चुके थे। अधिक संपन्नता ना होते हुए भी अखिलेश और सुनंदा की गृहस्थी की गाड़ी सुखपूर्वक चल रही थी। दोनों एक दूसरे से के प्यार में खोए हुए थे। जीवन में कभी कोई कमी ना थी, बस एक बात थी, प्रकृति ने सुनंदा को मातृत्व के सुख से वंचित रखा था। उसने अपना इलाज भी कराया, किंतु सब व्यर्थ। नारी के जीवन की संपूर्णता उसके माँ बनने में ही है, यह बात सुनंदा के मन में हर दम कचोटती रहती। इसी कारण वह बुझी बुझी से रहने लगी। सुनंदा की बड़ी बहन शोभा का विवाह भी इसी परिवार में अखिलेश के बड़े भाई तिलक से हुआ था। इसी कारण शोभा का रिश्ता बहन के साथ साथ जेठानी का भी था। दोनों बहनें एक ही मकान के ऊपर नीचे रहती थी। सुनंदा के जेठ तिलक एक टेलीविजन बनाने वाली प्रख्यात कंपनी के इंजीनियर थे। उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अखिलेश से अधिक अच्छी थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। सुनंदा का अधिकांश समय शोभा के बच्चों के साथ ही व्यतीत होता था। एक दिन दोपहर के समय सुनंदा धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी, तभी शोभा उसके पास आई और बोली, सुनंदा मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। सुनंदा ने सिलाइयाँ एक को रख कर कहा, कैसी मुसीबत दीदी? मुझे 2 माह का गर्भ है, तुम जानती हो आजकल तुम्हारे भाई साहब कितने व्यस्त रहते हैं, उन्हें छुट्टी मिलना अत्यंत कठिन है, इसलिए तुम्हें और अखिलेश को मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। किंतु अस्पताल क्यों, डॉक्टर को तो तुम दिखा चुकी हो ना? अरे गर्भपात कराने और क्यों, 3 बच्चों के बाद क्या चौथा करूंगी? अखिलेश से पूछकर बताना वह कब छुट्टी ले सकता है, इस मुसीबत से जितनी जल्दी छुटकारा पाऊं उतना ही अच्छा। ठीक है दीदी, शाम को जब वे आएंगे पूछकर आपको बता दूंगी। कहने को तो सुनंदा ने कह दिया, किंतु उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। शाम को अखिलेश के आने पर सुनंदा ने शोभा से हुई सारी बातचीत कह सुनाई। अंत में उसने जब अपनी इच्छा बताई तो अखिलेश सोच में पड़ गए। उन्होंने शंका व्यक्त की, क्या ऐसा हो सकता है, भाभी सहमत हो जाएगी? मेरे ख्याल से असहमत होने का कोई आधार नहीं, चलो उनसे पूछ कर आते हैं, कहते हुए सुनंदा उठ खड़ी हुई। शोभा उस समय पति के साथ चाय पी रही थी, तीनों बच्चे अलग कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। सुनंदा और अखिलेश पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। शोभा ने दोनों को चाय का एक कप पकड़ाते हुए कहा, तुमने बात की थी? हाँ, सुनंदा चाय का बड़ा सा घूंट भरते हुए बोली, तो फिर क्या विचार है? हमारा तो कुछ और ही विचार है, सुनंदा की जगह अखिलेश बोला, हम दोनों चाहते हैं कि आप गर्भपात ना कराएं। वह क्यों? शोभा और तिलक दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दीदी तुम जानती ही तो हो मैं माँ ना बन सकी, मेरी इच्छा है तुम इस बच्चे को मेरे लिए जन्म दो, सुनंदा याचना भरे स्वर में बोली। कुछ क्षणों तक शोभा से कुछ कहते ना बना, किंतु फिर बोली, ऐसा तुम क्यों सोचती हो, ये तीनों बच्चे क्या तुम्हारे नहीं हैं? हैं, ये भी मेरे ही हैं, किंतु मुझे माँ कहने वाला तो कोई नहीं ना, सुनंदा भराए स्वर में बोली। तिलक कुछ क्षणों तक आंखें बंद के विचार करते रहे, शोभा विचार मग्न बैठी रही, अखिलेश और सुनंदा बारी बारी दोनों का मुंह ताकते रहे, मानो कोई कठिन परीक्षा दे डाली हो और अब उसका परिणाम सुनने वाले हो। भैया भाभी की एक हाँ उनके अंधेरे जीवन में प्रकाश पुंज बनकर छा सकती थी और उनका इनकार जीवन में अंधकार को और भी गहरा बना सकता था। तिलक ने आंखें खोली और शोभा से बोले, सुनंदा ठीक कहती है, तुम्हें अपनी बहन की खातिर इस बच्चे को जन्म देना है। यो तो ये दोनों कोई भी बच्चा गोद ले सकते थे, किंतु अपना खून तो फिर अपना ही होता है ना। कुछ पल के लिए तिलक रुके, सुनंदा और अखिलेश को मानव परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। दोनों के चेहरे पर छाई उल्लास की आभा देखते ही बनती थी। तिलक ने पुनः कहना शुरू किया, शोभा एक बात शुरू से याद रखना, आज से बच्चा तुम्हारे पास सुनंदा और अखिलेश की अमानत है, उनकी अमानत बिना किसी झिझक के उन्हें सौंप देना। मेरा ख्याल है तुम मेरा आशय भली बातें समझ गई हो। जी समझ गई, शोभा ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। अखिलेश ने तुरंत उठकर बड़े भाई के पांव छू लिए, हर्ष तिरेक में सुनंदा भी बहन के गले लग गई। दीदी मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? पगली इसमें शुक्रिया जैसी क्या बात है, तुम दोनों खुश रहो, इससे अधिक खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है, शोभा ने सुनंदा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। यूं तो सुनंदा ने तीनों बच्चों के समय शोभा की सेवा करने में कोई कमी ना की थी। अखिलेश के माँ बाप का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था, परिवार के नाम पर दोनों भाई ही थे, किंतु इस बार सुनंदा का उत्साह देखते ही बनता था, वह शोभा की देखभाल ऐसे करती मानो वो कोई बच्ची हो। समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला और एक दिन दीपक की किलकारियां संगीत की स्वर लहरियां बनकर आंगन में यहां वहां सुनाई देने लगी। तिलक और शोभा अपने वचन पर कायम थे, उन्होंने बिना किसी झिझक के एक अमानत की भांति दीपक सुनंदा को सौंप लिया। फिर तो सुनंदा जैसे मुक्त गगन में पंख लगाकर उड़ने लगी, अब उसे जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हो गया था, दीपक की अच्छी से अच्छी परवरिश करना, उसे ऊंची शिक्षा दिलाना, उसे अच्छा इंसान बनाना, बस इन्हीं लक्ष्यों की सीमा के इर्द गिर्द उसके विचार मटराते रहते। इस सीमा के परे उसकी कोई व्यक्तित्व दुनिया नहीं थी, इस सत्यता को वह कब का भुला चुकी थी। अक्सर शोभा उसे मीठी झड़की देती, बच्चे सभी के होते हैं सुनंदा, तेरी तरह कोई स्वयं को नहीं भुला बैठता, कुछ अपना भी ख्याल रखा कर। सुनंदा सुनती और हंस देती। शोभा के प्रति उसका प्रेम और समान अब श्रद्धा में परिवर्तित हो चुका था। उससे अलग वह स्वयं को अपना अधूरा पाती थी। इसका एहसास उसे उस दिन हुआ जब तिलक ने टोरंटो जाने का निश्चय कर लिया, जहां उसके एक मित्र का परिवार बसा हुआ था। उसी ने तिलक के लिए एक फर्म में नौकरी का प्रबंध किया था। सुनंदा ने लाख चाहा अखिलेश तिलक को वहां जाने से रोक ले, किंतु अखिलेश ने साफ इनकार कर दिया। वह तिलक की प्रगति में बाधक नहीं बनना चाहता था। यहाँ एक ओर शोभा और अपनी धरती, अपना परिवार छोड़ने का दुख था, वहीं दूसरी ओर विदेश का आकर्षण और भौतिक सुख सुविधाओं उसे कमजोर बना रही थी। अंत में सिंह ही भारत वापस आने का वादा करके वह विदेश चली गई। एक लंबे समय तक सुनंदा और उसके परिवार में उनकी कमी को महसूस किया। दीपक अपने दोनों भाइयों और बहन से दूर होकर बहुत उदास रहने लगा था। कहते हैं वक्त हर चीज का इलाज है। समय के साथ दीपक भी समान होता चला गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में दीपक ने बहुत परिश्रम किया। अब उसे परीक्षा फल की प्रतीक्षा थी। इसी बीच शोभा और तिलक के पत्र आते रहे। एक दिन शाम को अखिलेश ऑफिस से लौटे तो वो बेहद प्रसन्न थे। आते ही बाहर सुनंदा आवाज लगाई, अरे भाई सुनंदा, दीपक बताओ तुम लोगों के लिए क्या खुशखबरी लाया हूँ। सुनंदा और दीपक बाहर आ गए। पिताजी आपकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो गई, दीपक चकते हुए बोला। गलत सुनंदा, अब तुम बोलो। आपकी तनख्वाह बढ़ गई, सुनंदा ने अनुमान लगाया। इन औरतों को तो पैसे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, अभिषेक ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। फिर दूसरे हाथ में पकड़ा मिठाई का डब्बा खोलते हुए बोले, जी भर कर मिठाई खाओ, कल भैया भाभी आ रहे हैं। सच? सुनंदा और दीपक खुशी से चिल्ला पड़े। हाँ भाई बिल्कुल सच, आज ऑफिस में भैया का फोन आया था। क्या हम उन्हें लेने जाएंगे पापा? जरूर जाएंगे, उन लोगों का विमान सुबह 8:10 पर आएगा, इसलिए हम सुबह जल्दी दिल्ली रवाना होंगे। सारी तैयारी अभी से कर लो। टोरंटो से आने वाला विमान ठीक समय पर उतरा। जैसे ही वे लोग हवाई अड्डे से बाहर आए, सुनंदा और दीपक उनकी ओर दौड़ पड़े। हर्ष तिरेक में सभी की आंखों में आंसू बह निकले। सुनंदा तो शोभा के दीपट कर फूट फूट कर रही थी। फिर सारा सामान टैक्सी में रखवा कर वे लोग दिल्ली से मेरठ की ओर रवाना हो गए। इसके पश्चात बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ पूरे रास्ते चलता ही रहा। मुरादनगर में रुक कर अखिलेश ने सबको कुल्फी खिलाई तो शोभा नाक सिकोड़ कर बोली, भारत में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह पाते। इसके पश्चात विदेश की सफाई और ऊंची संस्कृति का जिक्र मेरठ तक चलता रहा। वहाँ के रहन सहन, लोगों के परिश्रम की भावना, ईमानदारी से सुनंदा प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। तिलक और शोभा सबके लिए बहुत से उपहार लाए थे। सुनंदा उत्साहपूर्वक सबकी खातिर में जुट गई। कभी वह एक बच्चे की फरमाइश पूरी करती, कभी दूसरे की। सारा दिन बच्चे वीडियो पर फिल्में देखते और धमा चौकड़ी मचाते। इस तरह 8-10 कब बीत गए पता ही नहीं चला। उसके बाद वे लोग मेरठ में बोर होने लगे और भारत भ्रमण का प्रोग्राम बना लिया। अखिलेश उनके साथ जाने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें इतनी लंबी छुट्टी मिलना कठिन थी। दीपक के स्कूल खुलने में अभी काफ़ी समय था, इसलिए वह उनके साथ घूमने चला गया। उनके जाते ही घर की सारी रौनक भी चली गई, अखिलेश और सुनंदा अकेले रह गए। सुनंदा ने सोचा, इतने वर्षों तक अपने देश और स्वजनों से दूर रहकर वे लोग परेशान हो चुके होंगे और फिर से यहीं बसने की इच्छुक होंगे, किंतु ऐसा कुछ भी ना था। शोभा भी अब बहुत बदल चुकी थी। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग, विशेषकर बात बात में अपने देश को नीचा दिखाना सुनंदा को बुरा लगता था, किंतु वो खामोश ही रहती थी। उसमें समा गई अंधकार की बू ने और इस कथन ने कि रिश्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं और उनकी प्रगति में बाधक होते हैं, सुनंदा के मन को बुरी तरह आघात पहुंचाया था। जब वे एक माह पश्चात लौट कर आए तो उनके जाने के लिए नज़दीक आ गए थे। उनके जाने के दिन नज़दीक आ गए थे। एक दिन सुनंदा ने शोभा को तिलक से कहते सुना, मेरे तीन बच्चे कितने ऐशो आराम से पल रहे हैं और एक बेचारा अभाव में पल रहा है। तुम्हें ऐसी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए, दीपक को यहाँ किस चीज़ की कमी है, तिलक ने कहा। तुम इस बात को नहीं समझोगे, तुम बाप हो माँ नहीं, एक माँ के दृष्टिकोण से सोच कर देखो। शोभा भीगे स्वर में बोली, ना तो मैं उसका बाप हूँ और ना ही तुम उसकी माँ हो, यह बात अच्छी तरह समझ लो। उसकी माँ सुनंदा है और आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मुँह से ऐसी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तिलक ने कठोर शब्दों से कहा और बाहर चले गए। शोभा के मुँह से ऐसी बात सुनकर सुनंदा सन्न रह गई। उसने अखिलेश को यह बात बताई तो उसने कहा, शोभा भाभी ने दीपक को जन्म दिया है इसलिए उनके मन में ऐसी बात आना स्वाभाविक है, किंतु तुम तिलक भैया पर विश्वास रखो, वह तिलक को हमसे कभी दूर नहीं करेंगे। किंतु अखिलेश और सुनंदा का विश्वास रेत के महल के समान ढह गया। 2 वर्ष पश्चात तिलक और शोभा के पत्र आने लगे, जिनमें दीपक को टोरंटो भेजने का आग्रह होता था। वे उसे वहाँ इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। आखिरकार शोभा ने तिलक से अपनी बात मनवा ही ली। प्रारंभ में दीपक ने इस और अधिक ध्यान न दिया, किंतु जब तिलक और शोभा ने बार बार लिखा कि दीपक को अपने उज्जवल भविष्य की खातिर ऐसा अवसर नहीं खोना चाहिए, तो उसका मन भी डामाडोल होने लगा और वह निश्चय पर दृढ़ ना रह सका। एक दिन रात्रि के भोजन के समय बोला, पिताजी, ताऊजी बार बार लिख रहे हैं, क्यों ना हम उनकी बात मान लें, मैं भी वहीं जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। खाते खाते अखिलेश रुक गए और सुनंदा की ओर देखने लगे। सुनंदा बोली, तुम तो रुड़की से इंजीनियरिंग करना चाहते थे ना? पहले चाहता था परंतु अब नहीं, दीपक ने गंभीर स्वर में कहा। आखिर क्यों, क्यों नहीं चाहते? भारत में रहकर क्या बच्चे पढ़ते नहीं? यहाँ पर एक से एक विद्वान और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वे सभी क्या विदेश में पढ़े हैं? भावावेश में अखिलेश की आवाज़ ऊँची होगी। मैं मानता हूँ भारत में एक से एक बड़े विद्वान है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं जिससे अवसर मिले वह विदेश ना जाए। जरा सोचिए, कितने छात्रों को ऐसा सुनहरा अवसर हाथ लगता है, मुश्किल से 1000 में से 1 या 2, और वह भी कोरी भावुकता में बहकर ना जाए। दीपक के स्वर की तिक्तता ने सुनंदा को चौंका दिया। वह अब भी उत्तेजित होकर बोले जा रहा था, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे क्यों नहीं भेजना चाहते, आप फिर अकेले रह जाएंगे। अगर माँ बाप तो बच्चों के सुख के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में नहीं हिचकते। इसके बाद कुछ और सुनना सुनंदा के बस के बाहर था। वह सारी रात करवटें बदलती रही। दीपक ठीक कह रहा था, माँ बाप बच्चों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने से नहीं हिचकते, फिर वह क्यों हिचक रही है? यदि इस समय वह चूक गए तो दीपक सारी उम्र उसे क्षमा नहीं करेगा। उसके मन में सुनंदा की छवि एक स्वार्थी माँ के रूप में स्थापित हो जाएगी। क्या वह यह बात सहन कर सकेगी? नहीं, नहीं, नहीं। अंधी ममता के वशीभूत होकर वह अपने बेटे का दिल नहीं दुखा सकती, उसके मार्ग पर बाधा नहीं बन सकती। उसके उज्जवल भविष्य की खातिर उसे अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। सुनंदा ने यत्नपूर्वक अखिलेश को भी दीपक को कनाडा भेजने के लिए राजी कर लिया। इसके पश्चात उसने दीपक को भेजने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कब दीपक का पासपोर्ट वीजा बनकर तैयार हो गया सुनंदा को कुछ पता न चला। असल दीपक भी बेहद उदास हो उठता और बच्चों की भांति माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाता। माँ बाप को छोड़कर विदेश जाने का उसके मन पर भी बोझ था। इस बात को सुनंदा भली भांति जानती थी। माँ को पढ़ाई पूरी करते ही भारत लौटने का आश्वासन वह अक्सर देता रहता था, किंतु भविष्य में क्या होना था इसका उत्तर आने वाला तो वक्त ही दे सकता था। आखिर वह दिन भी आ गया जब दीपक माँ बाप को स्वतः अकेला छोड़कर टोरंटो चला गया। सुनंदा बुरी तरह टूट गई। इस स्वार्थी दुनिया पर उसका विश्वास उठ चुका था। उसे अब रह रहकर याद आता था कि उसने दीपक को पालने में क्या क्या कष्ट नहीं सहे। जब कभी वह बीमार हो जाता वह बदहवास हो उठती, उसकी देखभाल और सेवा में रात दिन एक कर देती। उसकी पढ़ाई की खातिर वह सदा ही अपने मन को मारती आई। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में वह दीपक के साथ स्वयं भी देर रात तक जागती रहती थी। 10वीं में दीपक ने अपने स्कूल में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। तब स्कूल के प्रिंसिपल के सम्मुख उसने कहा था, सर यह मेरी नहीं मेरी माँ की तपस्या का फल है। उस समय गर्व से उसका मस्तक ऊंचा उठ गया था। आज वही दीपक सब कुछ भूल भाल कर विदेश चला गया, मानो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का साधन ही ना हो अथवा उसके माँ बाप शिक्षा दिलवाने में असमर्थ हो। उसने यह भी ना सोचा कि उसके पूर्व माँ बाप यहाँ अकेले किसके सहारे दिन काटेंगे। एक एक दिन गिनते गिनते कुछ वर्ष बीत गए और दीपक की पढ़ाई पूरी हो गई। इसी के साथ उसकी वहाँ नौकरी भी लग गई। सुनंदा की रही सही आस भी जाती रही। इसी दुख के कारण वह बीमार होने लगी। ऐसे में अखिलेश ही उसका एकमात्र सबल थे। वह उसे दुनिया भर का ज्ञान और जीवन दर्शन समझाते रहते। दो दिन पूर्व अचानक बैंक जाते जाते अखिलेश सोफे पर बैठ गए। उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें नर्सिंग होम ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद उनकी सांस बंद हो गई। उनका सारा ज्ञान और जीवन दर्शन शून्य में खोकर रह गया। सुनंदा ने टोरंटो फोन करवाया कि तो इतनी शीघ्र वहाँ से दीपक का आना असंभव था। अखिलेश के शरीर को अग्नि भी उनके मौसेरे भाई के बेटे ने दी थी। माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी अर्थी को कंधा उनका पुत्र दे, किंतु अखिलेश की यह इच्छा पूरी ना हो सकी। सुनंदा ने सोचा वह भी ऐसे ही किसी दिन चली जाएगी। सोचते सोचते सुनंदा की व्याकुलता बढ़ने लगी। उसका जी चाह अखिलेश को किसी भी तरह वापस उसके पास आ जाए, किंतु वह तो उससे बहुत दूर जा चुके थे। सुनंदा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे संबंधों के कच्चेपन का एहसास तीव्रता से हो रहा था। जीवन भर उसने जिस संबंध की सार्थकता को भरपूर जिया था, चंद घंटों ने ही उसके क्षणभंगुर होने का एहसास करा दिया था। इंसान सोचता है माँ बाप, भाई बहन, पति पुत्र सभी उसके अपने हैं, किंतु वास्तव में कोई भी अपना नहीं है। इंसान पूर्णतया अकेला है, उसका स्वार्थ ही सर्वोपरि है। प्रकृति ने जिस सुख से उसे वंचित रखा था, सुनंदा ने उसे जबरदस्ती भोगना चाहा था। अब इतने वर्षों बाद वह समझ रही थी कि उधार का सुख भोगने से कोई लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उधार का सुख, जिसे लिखा है रेणु मंडल ने। चलिए कहानी शुरू करें। उधार का सुख। शमशान घाट से लौटते लौटते रात हो गई थी। दिन भर के थके मादे रिश्तेदार को जहां कहीं भी जगह मिली वहीं बसर गए और जल्दी ही नींद की आगोश में समा गए। रोते रोते बेहाल हो चुकी सुनंदा की आंखें भी बुखार से जल रही थी। वह भी चाहती थी कि कुछ देर सो जाए, किंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जिंदगी की नश्वरता ने उसके पति को उससे छीन लिया था। वह पति जो उसकी जिंदगी का स्वामी था, जिसने जिंदगी भर दुख सुख में साथ निभाने की कसम खाई थी, वही उसे दुखों के अथाह सागर में धकेल गया था। अब तो मात्र स्मृतियां ही शेष रह गई थी। वक्त जिन लम्हों को अतीत के गर्त में डुबो देता है, व्यक्ति लाख चेष्टा करे उन्हें वापस नहीं बुला सकता, किंतु हमारा यह मन उन लम्हों को पलक झपकते ही पुनः पा लेता है। मात्र पा ही नहीं लेता, पुनः उन्हें जीता भी है। सुनंदा के संवेदनशील मन ने भी अखिलेश की स्मृति को राख के ढेर में से अपने खोए हुए पलों को पुनः पा लिया। जब अखिलेश बैंक में एक क्लर्क के पद पर नियुक्त थे, विवाह को 7 वर्ष हो चुके थे। अधिक संपन्नता ना होते हुए भी अखिलेश और सुनंदा की गृहस्थी की गाड़ी सुखपूर्वक चल रही थी। दोनों एक दूसरे से के प्यार में खोए हुए थे। जीवन में कभी कोई कमी ना थी, बस एक बात थी, प्रकृति ने सुनंदा को मातृत्व के सुख से वंचित रखा था। उसने अपना इलाज भी कराया, किंतु सब व्यर्थ। नारी के जीवन की संपूर्णता उसके मां बनने में ही है, यह बात सुनंदा के मन में हर दम कचोटती रहती। इसी कारण वह बुझी बुझी से रहने लगी। सुनंदा की बड़ी बहन शोभा का विवाह भी इसी परिवार में अखिलेश के बड़े भाई तिलक से हुआ था। इसी कारण शोभा का रिश्ता बहन के साथ साथ जेठानी का भी था। दोनों बहनें एक ही मकान के ऊपर नीचे रहती थी। सुनंदा के जेठ तिलक एक टेलीविजन बनाने वाली प्रख्यात कंपनी के इंजीनियर थे। उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अखिलेश से अधिक अच्छी थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। सुनंदा का अधिकांश समय शोभा के बच्चों के साथ ही व्यतीत होता था। एक दिन दोपहर के समय सुनंदा धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी, तभी शोभा उसके पास आई और बोली, सुनंदा मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। सुनंदा ने सिलाइयाँ एक और रख कर कहा, कैसी मुसीबत दीदी? मुझे 2 माह का गर्भ है। तुम जानते हो आजकल तुम्हारे भाई साहब कितने व्यस्त रहते हैं, उन्हें छुट्टी मिलना अत्यंत कठिन है, इसलिए तुम्हें और अखिलेश को मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। किंतु अस्पताल क्यों? डॉक्टर को तो तुम दिखा चुकी हो ना। अरे गर्भपात कराने और क्यों, 3 बच्चों के बाद क्या चौथा करूँगी? अखिलेश से पूछ कर बताना वह कब छुट्टी ले सकता है। इस मुसीबत से जितनी जल्दी छुटकारा पाऊँ उतना ही अच्छा। ठीक है दीदी, शाम को जब वे आएंगे पूछ कर आपको बता दूंगी। कहने को तो सुनंदा ने कह दिया, किंतु उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। शाम को अखिलेश के आने पर सुनंदा ने शोभा से हुई सारी बातचीत कह सुनाई। अंत में उसने जब अपनी इच्छा बताई तो अखिलेश सोच में पड़ गए। उन्होंने शंका व्यक्त की, क्या ऐसा हो सकता है, भाभी सहमत हो जाएगी? मेरे ख्याल से असहमत होने का कोई आधार नहीं, चलो उनसे पूछ कर आते हैं, कहते हुए सुनंदा उठ खड़े हुए। शोभा उस समय पति के साथ चाय पी रही थी। 3 बच्चे अलग कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। सुनंदा और अखिलेश पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। शोभा ने दोनों को चाय का एक कप पकड़ाते हुए कहा, तुमने बात की थी? हाँ, सुनंदा चाय का बड़ा सा घूंट भरते हुए बोली, तो फिर क्या विचार है? हमारा तो कुछ और ही विचार है, सुनंदा की जगह अखिलेश बोला। हम दोनों चाहते हैं कि आप गर्भपात ना कराएं। वह क्यों? शोभा और तिलक दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दीदी तुम जानती ही तो हो मैं माँ ना बन सकी, मेरी इच्छा है तुम इस बच्चे को मेरे लिए जन्म दो, सुनंदा याचना भरे स्वर में बोली। कुछ क्षणों तक शोभा से कुछ कहते ना बना, किंतु फिर बोली, ऐसा तुम क्यों सोचती हो? ये 3 बच्चे क्या तुम्हारे नहीं हैं? हैं, ये भी मेरे ही हैं, किंतु मुझे माँ कहने वाला तो कोई नहीं ना, सुनंदा भराए स्वर में बोली। तिलक कुछ क्षणों तक आंखें बंद के विचार करते रहे। शोभा विचार मग्न बैठी रही। अखिलेश और सुनंदा बारी बारी दोनों का मुंह ताकते रहे, मानो कोई कठिन परीक्षा दे डाली हो और अब उसका परिणाम सुनने वाले हो। भैया भाभी की एक हाँ उनके अंधेरे जीवन में प्रकाश पुंज बनकर छा सकती थी और उनका इनकार जीवन में अंधकार को और भी गहरा बना सकता था। तिलक ने आंखें खोली और शोभा से बोले, सुनंदा ठीक कहती है, तुम्हें अपनी बहन की खातिर इस बच्चे को जन्म देना है। यूँ तो ये दोनों कोई भी बच्चा गोद ले सकते थे, किंतु अपना खून तो फिर अपना ही होता है ना। कुछ पल के लिए तिलक रुके। सुनंदा और अखिलेश को मानव परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। दोनों के चेहरे पर छाई उल्लास की आभा देखते ही बनती थी। तिलक ने पुनः कहना शुरू किया, शोभा एक बात शुरू से याद रखना, आज से यह बच्चा तुम्हारे पास सुनंदा और अखिलेश की अमानत है, उनकी अमानत बिना किसी झिझक के उन्हें सौंप देना। मेरा ख्याल है तुम मेरा आशय भली बातें समझ गई हो। जी समझ गई, शोभा ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। अखिलेश ने तुरंत उठकर बड़े भाई के पांव छू लिए। हर्ष तिरेक में सुनंदा भी बहन के गले लग गई। दीदी मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? पगली इसमें शुक्रिया जैसी क्या बात है, तुम दोनों खुश रहो, इससे अधिक खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है, शोभा ने सुनंदा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। यूँ तो सुनंदा ने 3 बच्चों के समय शोभा की सेवा करने में कोई कमी ना की थी। अखिलेश के माँ बाप का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो चुका था, परिवार के नाम पर दोनों भाई ही थे, किंतु इस बार सुनंदा का उत्साह देखते ही बनता था। वह शोभा की देखभाल ऐसे करती मानो वो कोई बच्ची हो। समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला और एक दिन दीपक की किलकारियां संगीत की स्वर लहरियां बनकर आंगन में यहां वहां सुनाई देने लगी। तिलक और शोभा अपने वचन पर कायम थे, उन्होंने बिना किसी झिझक के एक अमानत की भांति दीपक सुनंदा को सौंप लिया। फिर तो सुनंदा जैसे मुक्त गगन में पंख लगाकर उड़ने लगी। अब उसे जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हो गया था, दीपक के अच्छी से अच्छी परवरिश करना, उसे ऊंची शिक्षा दिलाना, उसे अच्छा इंसान बनाना। बस इन्हीं लक्ष्यों की सीमा के इर्द गिर्द उसके विचार मटराते रहते। इस सीमा के परे उसकी कोई व्यक्तित्व दुनिया नहीं थी, इस सत्यता को वह कब का भुला चुकी थी। अक्सर शोभा उसे मीठी झड़की देती, बच्चे सभी के होते हैं सुनंदा, तेरी तरह कोई स्वयं को नहीं भुला बैठता, कुछ अपना भी ख्याल रखा कर। सुनंदा सुनती और हंस देती। शोभा के प्रति उसका प्रेम और समान अब श्रद्धा में परिवर्तित हो चुका था। उससे अलग वह स्वयं को अपना अधूरा पाती थी। इसका एहसास उसे उस दिन हुआ जब तिलक ने टोरंटो जाने का निश्चय कर लिया, जहां उसके एक मित्र का परिवार बसा हुआ था। उसी ने तिलक के लिए एक फर्म में नौकरी का प्रबंध किया था। सुनंदा ने लाख चाहा अखिलेश तिलक को वहां जाने से रोक ले, किंतु अखिलेश ने साफ इनकार कर दिया। वह तिलक की प्रगति में बाधक नहीं बनना चाहता था। यहाँ एक ओर शोभा और अपनी धरती, अपना परिवार छोड़ने का दुख था, वहीं दूसरी ओर विदेश का आकर्षण और भौतिक सुख सुविधाएं उसे कमजोर बना रही थी। अंत में सिंह ही भारत वापस आने का वादा करके वह विदेश चली गई। एक लंबे समय तक सुनंदा और उसके परिवार में उनकी कमी को महसूस किया। दीपक अपने दोनों भाइयों और बहन से दूर होकर बहुत उदास रहने लगा था। कहते हैं वक्त हर चीज का इलाज है। समय के साथ दीपक भी समान होता चला गया और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में दीपक ने बहुत परिश्रम किया। अब उसे परीक्षा फल की प्रतीक्षा थी। इसी बीच शोभा और तिलक के पत्र आते रहे। एक दिन शाम को अखिलेश ऑफिस से लौटे तो वो बेहद प्रसन्न थे। आते ही बाहर सुनंदा आवाज लगाई, अरे भाई सुनंदा, दीपक बताओ तुम लोगों के लिए क्या खुशखबरी लाया हूँ। सुनंदा और दीपक बाहर आ गए। पिताजी आपकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो गई, दीपक चकते हुए बोला। गलत सुनंदा, अब तुम बोलो। आपकी तनख्वाह बढ़ गई, सुनंदा ने अनुमान लगाया। इन औरतों को तो पैसे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, अभिषेक ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। फिर दूसरे हाथ में पकड़ा मिठाई का डब्बा खोलते हुए बोले, जी भर कर मिठाई खाओ, कल भैया भाभी आ रहे हैं। सच? सुनंदा और दीपक खुशी से चिल्ला पड़े। हाँ भाई बिल्कुल सच, आज ऑफिस में भैया का फोन आया था। क्या हम उन्हें लेने जाएंगे पापा? जरूर जाएंगे, उन लोगों का विमान सुबह 8:10 पर आएगा, इसलिए हम सुबह जल्दी दिल्ली रवाना होंगे। सारी तैयारी अभी से कर लो। टोरंटो से आने वाला विमान ठीक समय पर उतरा। जैसे ही वे लोग हवाई अड्डे से बाहर आए, सुनंदा और दीपक उनकी ओर दौड़ पड़े। हर्ष तिरेक में सभी की आंखों में आंसू बह निकले। सुनंदा तो शोभा के लिपट कर फूट फूट कर रही थी। फिर सारा सामान टैक्सी में रखवा कर वे लोग दिल्ली से मेरठ की ओर रवाना हो गए। इसके पश्चात बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ पूरे रास्ते चलता ही रहा। मुरादनगर में रुक कर अखिलेश ने सबको कुल्फी खिलाई तो शोभा नाक सिकोड़ कर बोली, भारत में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रह पाते। इसके पश्चात विदेश की सफाई और ऊंची संस्कृति का जिक्र मेरठ तक चलता रहा। वहाँ के रहन सहन, लोगों के परिश्रम की भावना, ईमानदारी से सुनंदा प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। तिलक और शोभा सबके लिए बहुत से उपहार लाए थे। सुनंदा उत्साहपूर्वक सबके खातिर में जुट गई। कभी वह एक बच्चे की फरमाइश पूरी करती, कभी दूसरे की। सारा दिन बच्चे वीडियो पर फिल्में देखते और धमा चौकड़ी मचाते। इस तरह 8-10 कब बीत गए पता ही नहीं चला। उसके बाद वे लोग मेरठ में बोर होने लगे और भारत भ्रमण का प्रोग्राम बना लिया। अखिलेश उनके साथ जाने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें इतनी लंबी छुट्टी मिलना कठिन थी। दीपक के स्कूल खुलने में अभी काफ़ी समय था, इसलिए वह उनके साथ घूमने चला गया। उनके जाते ही घर की सारी रौनक भी चली गई। अखिलेश और सुनंदा अकेले रह गए। सुनंदा ने सोचा, इतने वर्षों तक अपने देश और स्वजनों से दूर रहकर वे लोग परेशान हो चुके होंगे और फिर से यहीं बसने की इच्छुक होंगे, किंतु ऐसा कुछ भी ना था। शोभा भी अब बहुत बदल चुकी थी। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग, विशेषकर बात बात में अपने देश को नीचा दिखाना सुनंदा को बुरा लगता था, किंतु वो खामोश ही रहती थी। उसमें समा गई अंधकार की बू ने और इस कथन ने कि रिश्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं और उनकी प्रगति में बाधक होते हैं, सुनंदा के मन को बुरी तरह आघात पहुंचाया था। जब वे एक माह पश्चात लौट कर आए तो उनके जाने के लिए नज़दीक आ गए थे। उनके जाने के दिन नज़दीक आ गए थे। एक दिन सुनंदा ने शोभा को तिलक से कहते सुना, मेरे तीन बच्चे कितने ऐशो आराम से पल रहे हैं और एक बेचारा अभाव में पल रहा है। तुम्हें ऐसी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए, दीपक को यहाँ किस चीज की कमी है, तिलक ने कहा। तुम इस बात को नहीं समझोगे, तुम बाप हो माँ नहीं, एक माँ के दृष्टिकोण से सोच कर देखो, शोभा भीगे स्वर में बोली। ना तो मैं उसका बाप हूँ और ना ही तुम उसकी माँ हो, यह बात अच्छी तरह समझ लो। उसकी माँ सुनंदा है और आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तिलक ने कठोर शब्दों से कहा और बाहर चले गए। शोभा के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुनंदा सन्न रह गई। उसने अखिलेश को यह बात बताई तो उसने कहा, शोभा भाभी ने दीपक को जन्म दिया है इसलिए उनके मन में ऐसी बात आना स्वाभाविक है, किंतु तुम तिलक भैया पर विश्वास रखो, वह तिलक को हमसे कभी दूर नहीं करेंगे। किंतु अखिलेश और सुनंदा का विश्वास रेत के महल के समान ढह गया। 2 वर्ष पश्चात तिलक और शोभा के पत्र आने लगे, जिनमें दीपक को टोरंटो भेजने का आग्रह होता था। वे उसे वहाँ इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। आखिरकार शोभा ने तिलक से अपनी बात मनवा ही ली। प्रारंभ में दीपक ने इस ओर अधिक ध्यान न दिया, किंतु जब तिलक और शोभा ने बार बार लिखा कि दीपक को अपने उज्ज्वल भविष्य की खातिर ऐसा अवसर नहीं खोना चाहिए, तो उसका मन भी डामाडोल होने लगा और वह निश्चय पर दृढ़ न रह सका। एक दिन रात्रि के भोजन के समय बोला, पिताजी ताऊ जी बार बार लिख रहे हैं, क्यों ना हम उनकी बात मान लें, मैं भी वहीं जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। खाते खाते अखिलेश रुक गए और सुनंदा की ओर देखने लगे। सुनंदा बोली, तुम तो रुड़की से इंजीनियरिंग करना चाहते थे ना? पहले चाहता था परंतु अब नहीं, दीपक ने गंभीर स्वर में कहा। आखिर क्यों क्यों नहीं चाहते? भारत में रहकर क्या बच्चे पढ़ते नहीं? यहाँ पर एक से एक विद्वान और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वे सभी क्या विदेश में पढ़े हैं? भावावेश में अखिलेश की आवाज ऊंची होगी। मैं मानता हूँ भारत में एक से एक बड़े विद्वान है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं जिसे अवसर मिले वह विदेश ना जाए। जरा सोचिए कितने छात्रों को ऐसा सुनहरा अवसर हाथ लगता है, मुश्किल से 1000 में से 1 या 2, और वह भी कोरी भावुकता में बहकर ना जाए। दीपक के स्वर की तिक्तता ने सुनंदा को चौंका दिया। वह अब भी उत्तेजित होकर बोले जा रहा था, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे क्यों नहीं भेजना चाहते, आप फिर अकेले रह जाएंगे। अगर माँ बाप तो बच्चों के सुख के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में नहीं हिचकते। इसके बाद कुछ और सुनना सुनंदा के वश के बाहर था। वह सारी रात करवटें बदलती रही। दीपक ठीक कह रहा था, माँ बाप बच्चों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने से नहीं हिचकते, फिर वह क्यों हिचक रही है? यदि इस समय वह चूक गए तो दीपक सारी उम्र उसे क्षमा नहीं करेगा। उसके मन में सुनंदा की छवि एक स्वार्थी माँ के रूप में स्थापित हो जाएगी। क्या वह यह बात सहन कर सकेगी? नहीं, अंधी ममता के वशीभूत होकर वह अपने बेटे का दिल नहीं दुखा सकती, उसके मार्ग पर बाधा नहीं बन सकती। उसके उज्जवल भविष्य की खातिर उसे अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। सुनंदा ने यत्नपूर्वक अखिलेश को भी दीपक को कनाडा भेजने के लिए राजी कर लिया। इसके पश्चात उसने दीपक को भेजने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कब दीपक का पासपोर्ट वीजा बनकर तैयार हो गया सुनंदा को कुछ पता न चला। अक्सर दीपक भी बेहद उदास हो उठता और बच्चों की भांति माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाता। माँ बाप को छोड़कर विदेश जाने का उसके मन पर भी बोझ था। इस बात को सुनंदा भली भांति जानती थी। माँ को पढ़ाई पूरी करते ही भारत लौटने का आश्वासन वह अक्सर देता रहता था, किंतु भविष्य में क्या होना था इसका उत्तर आने वाला तो वक्त ही दे सकता था। आखिर वह दिन भी आ गया जब दीपक माँ बाप को स्वतः अकेला छोड़कर टोरंटो चला गया। सुनंदा बुरी तरह टूट गई। इस स्वार्थी दुनिया पर उसका विश्वास उठ चुका था। उसे अब रह रहकर याद आता था कि उसने दीपक को पालने में क्या क्या कष्ट नहीं सहे। जब कभी वह बीमार हो जाता वह बदहवास हो उठती, उसकी देखभाल और सेवा में रात दिन एक कर देती। उसकी पढ़ाई की खातिर वह सदा ही अपने मन को मारती आई। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में वह दीपक के साथ स्वयं भी देर रात तक जागती रहती थी। 10वीं में दीपक ने अपने स्कूल में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। तब स्कूल के प्रिंसिपल के सम्मुख उसने कहा था, सर यह मेरी नहीं मेरी माँ की तपस्या का फल है। उस समय गर्व से उसका मस्तक ऊंचा उठ गया था। आज वही दीपक सब कुछ भूल भाल कर विदेश चला गया, मानो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का साधन ही ना हो अथवा उसके माँ बाप शिक्षा दिलवाने में असमर्थ हो। उसने यह भी ना सोचा कि उसके पूर्व माँ बाप यहाँ अकेले किसके सहारे दिन काटेंगे। एक एक दिन गिनते गिनते कुछ वर्ष बीत गए और दीपक की पढ़ाई पूरी हो गई। इसी के साथ उसकी वहाँ नौकरी भी लग गई। सुनंदा की रही सही आस भी जाती रही। इसी दुख के कारण वह बीमार होने लगी। ऐसे में अखिलेश ही उसका एकमात्र सबल थे। वह उसे दुनिया भर का ज्ञान और जीवन दर्शन समझाते रहते। 2 दिन पूर्व अचानक बैंक जाते जाते अखिलेश सोफे पर बैठ गए। उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें नर्सिंग होम ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद उनकी सांस बंद हो गई। उनका सारा ज्ञान और जीवन दर्शन शून्य में खोकर रह गया। सुनंदा ने टोरंटो फोन करवाया कि तो इतनी शीघ्र वहां से दीपक का आना असंभव था। अखिलेश के शरीर को अग्नि भी उनके मौसेरे भाई के बेटे ने दी थी। माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी अर्थी को कंधा उनका पुत्र दे, किंतु अखिलेश की यह इच्छा पूरी ना हो सकी। सुनंदा ने सोचा वह भी ऐसे ही किसी दिन चली जाएगी। सोचते सोचते सुनंदा की व्याकुलता बढ़ने लगी। उसका जी चाहा अखिलेश को किसी भी तरह वापस उसके पास आ जाए, किंतु वह तो उससे बहुत दूर जा चुके थे। सुनंदा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे संबंधों के कच्चेपन का एहसास तीव्रता से हो रहा था। जीवन भर उसने जिस संबंध की सार्थकता को भरपूर जिया था, चंद घंटों ने ही उसके क्षणभंगुर होने का एहसास करा दिया था। इंसान सोचता है माँ बाप, भाई बहन, पति पुत्र सभी उसके अपने हैं, किंतु वास्तव में कोई भी अपना नहीं है। इंसान पूर्णतया अकेला है, उसका स्वार्थ ही सर्वोपरि है। प्रकृति ने जिस सुख से उसे वंचित रखा था, सुनंदा ने उसे जबरदस्ती भोगना चाहा था। अब इतने वर्षों बाद वह समझ रही थी कि उधार का सुख भोगने से कोई लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।